सुर्खियों में
नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम में आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं निशित कुमार और आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा, नॉर्डिक देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों का नया युग पर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर गुलशन सचदेवा, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट। प्रोफेसर सचदेवा, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
जी शुक्रिया।
प्रधानमंत्री अपने 5 देशों की चौथे चरण की यात्रा में आज नॉर्वे पहुंचे। प्रधानमंत्री ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनस गहर स्टोर से भी बातचीत की और कल 3rd India-Nordic Summit में भी भाग लेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए सुनते हैं कि संयुक्त प्रेस वार्ता में नॉर्वे में प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
आज विश्व एक अस्थिरता और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में भारत और यूरोप अपने संबंधों के एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले वर्ष भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। यह एग्रीमेंट भारत और नॉर्वे के बीच शेयर्ड प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करने का ब्लूप्रिंट है। इस एग्रीमेंट में अगले 15 वर्ष में भारत में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है। आज हम भारत नॉर्वे संबंधों को एक ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप दे रहे हैं। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से क्लीन एनर्जी से लेकर क्लाइमेट रेजिलियंस, ब्लू इकोनॉमी, उससे लेकर के ग्रीन शिपिंग, हर क्षेत्र में भारत की स्केल, स्पीड और टैलेंट को नॉर्वे की टेक्नोलॉजी और कैपिटल के साथ जोड़कर हमारी कंपनीज ग्लोबल सॉल्यूशंस डेवलप करेगी। इसरो और नॉर्वे स्पेस एजेंसी के बीच आज हो रहा MOU हमारे स्पेस कोऑपरेशन को भी नया आयाम देगा। भारत और नॉर्वे की ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पूरे विश्व के लिए लाभदायक होगा। हमें बहुत खुशी है कि नॉर्वे आज इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव से जुड़ रहा है। आर्कटिक से आउटर स्पेस तक, ग्रीन शिपिंग से ब्लू इकोनॉमी तक, एनर्जी सिक्योरिटी से लेकर फूड सिक्योरिटी तक हमारा सहयोग नए फ्रंटियर्स को छू रहा है।
प्रोफेसर सचदेवा, जैसा कि आज हमने प्रधानमंत्री को सुना, उन्होंने खास करके ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर काफी बल दिया है। प्रोफेसर सचदेवा, हम यहां समझना चाहेंगे कि ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आखिर होता क्या है।
जी, ये इनफैक्ट जैसे आप देखें, ये पूरे दौरे के अंदर, इससे पहले प्रधानमंत्री स्वीडन में भी थे, उससे पहले नीदरलैंड में थे, अभी नॉर्वे में है, आज द्विपक्षीय बात हुई है, कल उनकी जो है इंडिया नॉर्डिक समिट होगी। इस सारे दौरे के दौरान बार बार ये जो बात उभर के आ रही है, ग्रीन ट्रांजिशन की, ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी हमने जैसे नॉर्वे के जो हमारी संबंध है उनको एलिवेट करके ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे बदल दिया है। इससे पहले हमारी ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेनमार्क के साथ भी थी, और पिछले 2 देशों में जहां इन्होंने दौरा किया था, स्वीडन में और नीदरलैंड में, वहां पे भी पार्टनरशिप को ऊपर करके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा वहां पे दे दिया गया है। तो इस पूरे संदर्भ में मुझे लगता है कि भारत का जो दृष्टिकोण है यूरोप की तरफ, वो पहले से काफी बदल गया है, और हमारा जो लक्ष्य है 2047 का, जब हम विकसित भारत बनना चाहते हैं, उसमें मुझे लगता है भारत एक यूरोप को और यूरोप के अलग अलग देशों में उनकी शक्ति को पहचानते हुए, किसकी कॉम्पिटेंसी किस चीज में ज्यादा है, उसमें उनके साथ उसी टाइप की साझेदारी हम बना रहे हैं। और उस पूरी जो आने वाले 20 साल में हमको खासतौर से जो व्यापार है, निवेश है, तकनीक है, ग्रीन ट्रांजिशन है, उसमें भारत, ये सारे यूरोप के जो देश हैं, मुझे लगता है वो काफी उसमें हमारी मदद कर सकते हैं। जैसे नॉर्वे की खास बात करें, नॉर्वे में हालांकि आप जानते हैं कि उनके पास बहुत ही तेल के और गैस के भंडार हैं, उसके बावजूद भी वहां पे जो उनकी अपना बिजली जो खपत है, 80% जो है वो सिर्फ हाइड्रो इलेक्ट्रिक वहां से आता है। तो भंडार होने के बावजूद भी वो काफी जो है अपनी ग्रीन एनर्जी की काफी तवज्जो दे रहे हैं, और यही बात पूरे नॉर्डिक के देशों की भी है और पूरे यूरोप के देशों की भी है। तो इनफैक्ट जो अभी हमने 3 महीने पहले जब भारत और यूरोपीय संघ की जो समिट दिल्ली में हुई थी
जी
उसमें भी जो 2030 का हमने जो एक पूरा रोडमैप बनाया था उसके अंदर भी हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा स्तंभ जो उसका 2030 का भारत और यूरोपीय संघ का है वो भी ग्रीन ट्रांजिशन वाला है, ग्रीन एनर्जी की पार्टनरशिप का है। अगर क्लाइमेट चेंज की जो बात है वो पूरी दुनिया की इकट्ठी बात है, वो ऐसा नहीं है कि नॉर्वे में कुछ हो रहा है उसका असर हमारे ऊपर नहीं होगा और जो हमारे यहाँ भारत के अंदर जो भी कुछ होगा उसका असर भी पूरी दुनिया के अंदर होगा। तो किस तरीके से दोनों देश जो है वो मिलके इस पूरी समस्या को सुलझा सकते हैं, क्योंकि वहां से उनके पास कई तकनीक है जो उन्होंने डेवलप की है सस्टेनेबल मॉडर्नाइजेशन की, सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन की, और एनर्जी को कैसे एफिशिएंटली यूज करना है और कैसे उसको ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ना है। तो वो सारी जो चीजें और जो सारी पॉलिसीज जो ये सब लोग सब कंट्रीज और खासतौर से नॉर्डिक के देश और नॉर्वे जो है वो अपने देश में अपना रहे हैं, मुझे लगता है हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको भी लगता है कि उससे भारत काफी फायदा उठा सकता है। और उन टेक्निक्स को अगर हम भारत में लाते हैं तो एक तो यह है कि वहां की कंपनीज को भी उससे फायदा होगा क्योंकि उनको एक बड़ा स्केल यहां पे उसको बढ़ाने के लिए मिल जाएगा। और भारत उसको जैसे प्रधानमंत्री ने बोला कि हम नॉर्वे के साथ खासतौर से ट्रायंगुलर डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं और कई ऐसी चीजें हैं, उन्होंने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की, और ग्रीन टेक्नोलॉजीज अगर उनकी तकनीक और हमारे उसको बड़े तरीके से कैसे तीसरी दुनिया के देशों में वही तकनीक को हम यहाँ पे लागू कर सकते हैं तो उसको और देश भी इससे फायदा उठा सकते हैं। तो इस तरह से पूरी जो ग्रीन ट्रांजिशन है जो बदल रहा है दुनिया और उसके अंदर भारत यूरोप को और खासतौर से नॉर्डिक के जो देश हैं उनको अपना एक अच्छा साझेदार मानता है और उनको भी लगता है कि भारत के साथ जो ये साझेदारी है ये काफी फायदेमंद है सबके लिए।
स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से हम बात करें अगर आर्थिक साझेदारी की तो इस पे भी प्रधानमंत्री ने काफी बल दिया है और हाल में ही इंडिया एफ्टा ट्रेड अग्रीमेंट जो साइन हुआ और टेपा अग्रीमेंट जो साइन हुआ इस पर भी प्रधानमंत्री ने बात की। तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से प्रोफेसर सचदेवा अगर हम आर्थिक साझेदारी की बात करें तो आप कैसे देखते हैं कि भारत और नॉर्वे के बीच में किस तरह से और खास करके आने वाले दिनों में आने वाले वर्षों में अगर हम कहें तो किस तरह का एक सिनेरियो आप डेवलप होता देख रहे हैं?
भारत और यूरोप के बीच में जो संबंध हमारे रहे हैं दशकों से उसका सबसे बड़ा जो मुख्य बिंदु है कोर वो आर्थिक संबंध हमारे उनके साथ रहे हैं, इसीलिए जो है व्यापार का, निवेश का, तकनीक का एक बहुत बड़ा उसके अंदर हिस्सा है। और 2007 से जो है हम लोग यूरोपीय संघ के साथ नेगोशिएशन कर रहे थे एग्रीमेंट के लिए और उसी तरीके से 20 साल के करीब हमने एफ्टा कंट्रीज के साथ भी नेगोशिएशन किया और सबसे पहला जो हमारा ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था वो एफ्टा कंट्रीज के साथ किया था 2024 में और उसके बाद यूके के साथ किया और अभी जो है नेगोशिएशन कंप्लीट हमने यूरोपीय संघ के साथ भी कर ली है। तो ये खासतौर से जो एफ्टा कंट्रीज के साथ हमने समझौता सबसे पहले किया था वो एक तरीके से टेम्पलेट बन गया हमारे बाकी दोनों समझौतों के लिए भी। तो उसमें एक तो ये है कि हमारा जो वस्तुएं हैं वहां पे उनको काफी मार्केट मिल जाएगी, ये ऐसा हमारा मानना है उसके तहत। और सबसे बड़ी चीज ये है क्योंकि इन देशों के पास और नॉर्वे के पास खासतौर से काफी निवेश की संभावनाएं हैं और उस समझौते के तहत ये भी एफ्टा कंट्रीज ने एक तरीके से वायदा भारत के साथ किया है कि $150 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आने वाले 10-15 साल में वो भारत में करेंगे। जो नॉर्वे के अंदर खासतौर से वहां का उनका जो अपना पेंशन फंड है
जी।
बहुत बड़ा पेंशन फंड है, उसने ऑलरेडी भारत के अंदर भारत की कंपनीज में 27-28 बिलियन का इन्वेस्टमेंट उसने ऑलरेडी करके रखा हुआ है यहाँ पे। तो और भी संभावनाएं उनको लगती है कि भारत की जो मार्केट है खासतौर से जो स्टॉक मार्केट है उसके अंदर भी वो काफी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो संभावनाएं इस पूरे एफ्टा के साथ बनी है दोनों नॉर्डिक के देशों के बीच में और एफ्टा कंट्रीज के बीच में और भारत के बीच में, और उसमें यह भी है कि भारत के अंदर जो सर्विसेज हैं उनको भी शायद वहां पे पहले से अधिक मिल पाएगा मार्केट और वहां की सर्विसेज भी भारत के अंदर आ पाएंगी। तो दोनों को लगा जो फायदेमंद है दोनों के लिए तो इसलिए उसी के ऊपर काफी बल दे रहे हैं। तो ये दोनों जो एग्रीमेंट हमने किए हैं उन दोनों एग्रीमेंट्स को नॉर्वे को भी और दूसरे देशों को फायदा उठाना चाहिए, यही शायद प्रधानमंत्री उनको बता रहे थे वहां।
जी जी जी, प्रोफेसर सचदेवा प्रधानमंत्री कल स्वीडन में भी थे और आज नॉर्वे आए हैं। भारत और स्वीडन के बीच में भी काफी लॉन्ग स्टैंडिंग एक बहुआयामी एक रिश्ता रहा है काफी लंबा, लेकिन महत्वपूर्ण इस बार इसलिए भी है कि वो रिश्ता इस बार स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट हुआ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और जैसा कि हम समझते हैं कि ये चार बिंदुओं पे मुख्य रूप से आधारित है। प्रोफेसर सचदेवा, हम समझना चाहेंगे कि ये नॉर्मल जो पार्टनरशिप था उसको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एलिवेट करने का क्या अर्थ हुआ, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होता क्या है?
स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जैसे मैं बता रहा था कि यूरोप के अंदर हमारा सिर्फ यूरोपीय संघ के साथ ही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नहीं है, इससे पहले हमारा फ्रांस और जर्मनी के साथ था, और जब यूके उसका हिस्सा था उनके साथ भी हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, और पिछले कुछ सालों में हमने इटली और ग्रीस और पोलैंड के साथ भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाया था। और अभी जो है इस दौरे के दौरान हमने देखा कि दो और देशों के साथ, स्वीडन और नीदरलैंड्स के साथ भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एलिवेट किया गया है। इसका बेसिक मतलब ये है कि एक तो यह है कि जब आप किसी कंट्री को स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानते हैं तो इसका मतलब ये है कि मोटे तौर से हमारे हित जो हैं उनके साथ स्ट्रेटेजिक तौर से, चाहे वो आर्थिक स्ट्रेटेजी हो, चाहे एनर्जी की स्ट्रेटेजी हो हमारी, या हमारी दूसरे संबंध हो सुरक्षा के, उन सब में कहीं ना कहीं उन्हें हमारा कोई आपस में कोई मतभेद नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब आप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अनाउंस करते हैं तो उसका एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाते हैं। मतलब ये कि कई जगह पे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में हर साल एक समिट मीटिंग होगा, कहीं पे फॉरेन मिनिस्टर के लेवल पे मीटिंग होगी, और दूसरे जो है मंत्रियों के तौर पे या अधिकारियों के तौर से अलग से कुछ वर्किंग ग्रुप्स बनेंगे, कुछ डायलॉग्स चलेंगे, तो एक लंबा एक पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे स्वीडन के साथ हमने पहले जो है वो एक इंडिया स्वीडन टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉरिडोर बनाया था, उसको और भी उसके अंदर बल दिया जाएगा। उसके अंदर कल जो है एक नया ज्वाइंट इनोवेशन पार्टनरशिप भी वहां पे लॉन्च किया गया। तो ये है कि ये सब चीजें, नए चीजें लॉन्च की गई हैं, प्लस हमारी उनके साथ पहले से समझ बनी है, और उसमें ये भी कहा गया है कि आर्थिक तौर से भी हम दोनों आपस में मजबूती बनाएंगे, और क्योंकि स्वीडन यूरोपीय संघ का हिस्सा है और हमारा उनके साथ एफटीए हो रहा है तो उसका फायदा भारत तो और स्वीडन दोनों को होगा।
स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और स्वीडन के संबंध लोकतांत्रिक मूल्यों, इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी की साझा प्रतिबद्धता पर आधारित है। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और स्वीडन के द्विपक्षीय संबंधों को लेकर क्या कहा।
भारत और स्वीडन के संबंध लोकतांत्रिक मूल्यों, रूल ऑफ लॉ और ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट की मजबूत नींव पर आधारित है। हम दोनों इनोवेशन को विकास का माध्यम मानते हैं, सस्टेनेबिलिटी को अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और डेमोक्रेसी को अपनी ताकत मानते हैं। आज की बैठक में हमने इन समानताओं के आधार पर आगे बढ़ने पर चर्चा की। हर क्षेत्र में हमारे बढ़ते सहयोग को देखते हुए हमने हमारे संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के सूत्र में बांधने का निर्णय लिया। इस पार्टनरशिप के अंतर्गत हम ग्रीन ट्रांजिशन, रक्षा, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी तथा पीपल टू पीपल टाइज जैसे मुख्य स्तंभों पर आगे बढ़ेंगे।
प्रोफेसर सचदेवा, प्रधानमंत्री की पांच देशों की ये यात्रा और खास करके नॉर्डिक देशों की यात्रा की बात अगर हम कहें तो आप इसे कैसे देखते हैं, कितना महत्वपूर्ण है ये?
यूरोपीय देश आप जानते हैं कि एक पूरा उनका अपना एक समूह है 27 देशों का, उसके अलावा और दूसरे यूरोप के देश हैं जो दूसरे तरीके से इस यूरोपीय संघ के साथ जुड़े हुए हैं। तो हम एक तरीके से पहले तो हमने यूरोपीय संघ के साथ अपने आप को मजबूत किया और उनके साथ ट्रेड एग्रीमेंट किया है, उसके बाद जो स्ट्रेटेजिक तरीके से जो बायलैटरल रिलेशनशिप है हमारे, द्विपक्षीय संबंध है, तो उसको अलग अलग देशों के साथ उसको हम पहले से और एलिवेट कर रहे हैं। तीसरे तरीके से एक जैसे कोई ग्रुप है, समूह है, जैसे ये नॉर्डिक का अपना समूह है और इसके तौर पे हमने नॉर्डिक बाल्टिक बिजनेस कन्क्लेव भी करते हैं जिसमें नॉर्डिक और बाल्टिक के जो तीन देश हैं उनके साथ भी बातचीत करते हैं। तो इस तरीके से जो पूर्वी यूरोप के देश हैं उनके साथ अलग से भी, तो अलग अलग तरीके से कैसे सबके साथ कनेक्ट करें, जहां पे जिसकी जो कॉम्पिटेंसी जहां पे हम कर सकते हैं
जी।
तो यूरोप को इस तरह से समझते हुए हम अलग तरीके से, जैसे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट है वो आपको यूरोपीय संघ के साथ करना पड़ेगा, अगर माइग्रेशन मोबिलिटी की बात है वो आपको बायलैटरली उसकी ट्रीटीज करनी पड़ेगी। भारत एक अच्छा साझेदार आने वाले सालों में हो सकता है।
प्रोफेसर सचदेवा, आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जी शुक्रिया।
इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
सुर्खियों में।